तो शुरू करते हैं। पहला सवाल जो है कि शुद्धिकरण क्या है और मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे शुद्धिकरण की ज़रूरत है। दोनों ही बहुत अच्छे सवाल हैं और दोनों अपने आप में जो शुद्धिकरण है अपने आप में ही बहुत बड़ा विषय है जिस पे बहुत अच्छे से चर्चा की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आज हम थोड़ा सिंपल तरीके से जो बेसिक्स हैं उसको समझेंगे इसको लेकर। तो सबसे पहले तो बात क्या हुई कि हम पहले लेंगे कि शुद्धिकरण मुझे क्यों चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ उन्होंने वहाँ पर नहीं रोक दिया कि शुद्धिकरण क्या है, ये भी रियलाइज़ किया कि मुझे कैसे पता लगेगा। तो हमें पहले हम अपने रोज़मर्रा के एग्जांपल्स लेते हैं, रूटीन के एग्जांपल्स, कि हम किसी भी चीज़ को जब शुद्ध करते हैं या साफ़ करते हैं तो कैसे पता पड़ता है। अगर हम अपने घर की सफाई करते हैं तो हमें दिख रहा होता है ना कि गंदा हो गया, झाड़ू लगाते हैं, डस्टिंग करते हैं, उसको साफ़ कर रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। अगर हमारा शीशा है, हम उसको शीशे को साफ़ करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारा चेहरा उसमें सही से नज़र नहीं आ रहा, वहाँ पर कुछ गंदगी है, हमें दिखता है, तभी तो हम साफ़ करते हैं, नहीं तो हम साफ़ नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर मुझे लगता है कि मेरे अंदर शांति नहीं है, अच्छे इमोशंस नहीं है, या मेरे अंदर डिस्टर्बेंस रहती है माइंड में, अगर मेरे माइंड में मुझे हर चीज़ से एक इरिटेशन होती है, तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि हाँ मुझे शुद्धिकरण की ज़रूरत है, मन के शुद्धिकरण की। हमें डिसाइड करना होगा किस चीज़ का शुद्धिकरण करना है ना। तो जो डिस्टर्बेंस हो रही है, फिर हम देखते हैं कि वो डिस्टर्बेंस किस चीज़ से हमें हो रही है। जैसे कि क्या वो डिस्टर्बेंस बाहर से किसी परिस्थिति के कारण हो रही है, क्या वो मेरे एनवायरनमेंट के कारण हो रही है, क्या वो किसी पर्सन के कारण हो रही है, या फिर वो मेरे अपने ही भावों और विचारों से हो रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों पर काम करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको आंसर ऐसा नहीं है कि एक परफेक्ट आंसर मिल जाएगा और आप उसको अप्लाई कर लेंगे, आपको प्रोसेस बता दिया जाएगा, लेकिन काम आपको खुद ही करना होगा। और मैं बताऊँ, जब आप खुद इस प्रोसेस को फॉलो करके आप समझेंगे तो वो सिर्फ आज की बात नहीं होगी, वो आपके लिए हमेशा के लिए आपके माइंड में फिट हो जाएगा और आप कभी भी फिर इस प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करना है, पहले मुझे देखना है कि किन किन चीज़ों से मेरे मन में डिस्टर्बेंस आ रही है। और सिंस यहाँ पर आपने ऑलरेडी अपने, क्योंकि सवाल आप ही के हैं, आपने बाद में भी शेयर किए हैं जो आपका फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, उससे पता लगता है यहाँ पे हमें क्या पता पड़ रहा है कि शायद किसी पर्सन के कारण हो रहा है ना, किसी पर्सन से। अब ये जो पर्सन है और जो मेरी डिस्टर्बेंस है, पर्सन क्या है, पर्सन सिर्फ एक बाहर का ऑब्जेक्ट है जो जिसके वजह से मेरे मन की अशुद्धि या मेरे मन के जो बिलीफ सिस्टम है वो मुझे नज़र आ रहे हैं। देखो जैसे हम बोलते हैं, सपोज़ कोई पर्सन कुछ करता है, कोई व्यक्ति कुछ करता है और मुझे गुस्सा आता है, तो ऐसा नहीं है कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया, गुस्सा ऑलरेडी मेरे अंदर है। वो जो पर्सन है वो क्या बना, वो एक निमित्त बना उस गुस्से को बाहर लाने के लिए। किसी भी सिचुएशन में जो मेरे अंदर डिस्टर्बेंस आती है वो डिस्टर्बेंस मेरी है, लेकिन वो बाहर वाला पर्सन या बाहर वाली सिचुएशन वो निमित्त बनती है, कारण बनती है, जिसके कारण वो जो मेरी डिस्टर्बेंस है मुझे नज़र आती है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पर माइंड अगर डिस्टर्ब हो रहा है, आपके ये सवाल आ रहे हैं, इसका मतलब डेफिनेटली शुद्धिकरण की ज़रूरत है। और शुद्धिकरण यहाँ पर कैसे होगा, यहाँ पर शुद्धिकरण हम आगे और भी जब ये सवाल लेंगे तो और क्लियरली बात करेंगे। शुद्धिकरण के तरीके होते हैं कि हम उसको अपने एनवायरनमेंट को चेंज करके करें, अपने शरीर के साथ हम क्या खाते पीते हैं उस पे करें, या हम अपने बिलीफ सिस्टम्स पे हमें शुद्धिकरण करना है, या हमें अपनी वाणी पे करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम शुद्धिकरण को कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सी सिचुएशन में आप हैं। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि हाउ डू आई नो व्हेन आई नीड इट, if you are being disturbed in your mind, if there are negative emotions, that means that you need shuddhikaran. अब शुद्धिकरण क्या होता है? वही जैसे मैंने बताया, मतलब किसी चीज़ जो अभी है वो जैसी है उसमें एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है, उससे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ अभी मैं जिस भी पोजीशन में हूँ। जैसे अगर मेरा घर गंदा पड़ा है और मुझे वो गंदा दिख रहा है तो मुझे ज़रूरत है कि मुझे इसको साफ़ करनी है। हाँ, कोई हो सकता है जो गंदे घर में भी पड़ा हो और उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसको रियलाइज़ भी नहीं हो रहा है, वो एक बात अलग हो गई। ऐसे ही अगर मेरा माइंड डिस्टर्ब्ड है और मुझे अब इसको बदलना है, मुझे कुछ बदलने की ज़रूरत है, शुद्धिकरण इज़ नथिंग बट डिसाइडिंग टू चेंज समथिंग। कुछ हम चेंज करेंगे जिससे मेरे लिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाए, मतलब बैड इमोशंस की जगह, बुरे भावों की जगह अच्छे भाव आए, तो हम बोल सकते हैं वो जो चीज़ होगी वो होगा शुद्धिकरण करना। अब जैसे मैंने बताया, शुद्धिकरण सबसे पहले शुरू होता है जब हम देखते हैं, ये मैं आपको बहुत ब्रॉडली बता रही हूँ, फिर हम स्पेसिफिकली लेंगे। एक तो हमें देखना होता है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, हम कैसे देश में हैं, कैसे समाज में हैं, कैसी जगह पे रहते हैं, कैसे लोग हैं जो हमारे साथ रहते हैं। अब आप सोच सकते हो, इसी समय बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वॉर बहुत स्ट्रॉन्गली चल रहा है, वहाँ पर आपको माइंड डिस्टर्ब होना ही है ना। तो हमें यहाँ पर ये भी देखना होगा कि मैं क्या बदल सकता हूँ और मैं क्या नहीं बदल सकता। कभी कभी ऐसा एनवायरनमेंट होता है हमारा जिसको हम बदल नहीं सकते, या फिर ऐसा बोलें कि उसको बदलने में जितना एफर्ट लगेगा वो एफर्ट वर्थ नहीं है, उससे बेटर होता है कि उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करके रह जाओ। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या मैं इसको बदलना, मेरे लिए पॉसिबल भी है कि नहीं है। तो अगर मैं किसी ऐसे देश में हूँ जहाँ पर वॉर चल रही है, मैं ऐसी कम्युनिटी में हूँ जहाँ पर सारे लोग ही लड़ना भिड़ना सब जो है वैसा पसंद करते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जो जिनसे मैंने क्रिया सीखी थी, जो मेरे गुरुजी थे ज्ञान स्वामी जी, वो एक क्षत्रिय परिवार से थे और बिहार के थे, और उनकी जो फैमिली थी वहाँ पर सब आसपास ऐसे थे कि किसी ने कुछ ज़रा सा अगर बोल दिया तो मार दो काट दो, इस तरह के लोग जो होते हैं ना, कि कोई मतलब ज़रा सा भी किसी का कुछ सहना नहीं है, अपनी नाक ऊँची रखनी है और दूसरों की नीचे। तो वो बताते थे कि उन्हें बहुत अनकंफर्टेबल लगता था वो, और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने छोड़ दिया, वो वहाँ से निकल गए, उनको लगा कि नहीं, मैं ऐसी वाले इस तरह के समाज में नहीं रह सकता हूं। ऐसे बहुत सारे लोग, ऑब्वियसली जब तक आप वहाँ पर रहते हो आप उन पर डिपेंडेंट होते हो, लेकिन फिर आपको देखना होता है कि आप वहाँ से निकल सकते हो अगर आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, या नहीं निकल सकते, और अगर आप निकल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर हमारी फैमिली के लोग, आसपास के लोग, क्योंकि बहुत सारी जो हमारी अशुद्धियाँ होती हैं ना, वो कंडीशनिंग होती है, वो हमें जो बचपन से सिखाया होता है, क्योंकि उन्होंने भी जो सीखा है वो सब ऐसे ही बिहेव करते हैं और हमें भी वही बिहेवियर सिखाते हैं। तो क्या जब मुझे समझ में आए कि हाँ, ये लोग जो मुझे सिखा रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि ये खुद भी दुखी हैं और मैं भी दुखी हूँ इनकी वजह से, अब क्या हमेशा पॉसिबल है अपनी फैमिली को बदल देना? सबसे मुश्किल काम, बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी को हमें बदलना वैसे भी नहीं है, हर कोई सिर्फ खुद को बदल सकता है, और वो भी तब जब वो बदलना चाहे। तो हम एनवायरनमेंट का ऐसे देखते हैं कि क्या मैं उसको बदल सकता हूँ या कितना नहीं बदल सकता और क्या बदल सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मेरा कार्य कैसा है, मैं किस तरह का काम करता हूँ। देखो, हम बोलते हैं ना, शुद्ध मन की जब बात करते हैं, शुद्ध मन से पहले आता है शुद्ध तन, आपका शरीर कितना शुद्ध है, और शुद्ध तन से पहले आता है शुद्ध धन, मतलब जिस तन को, जो हम खाना खाते हैं, जो हम अन्न लेते हैं, हम जहाँ जो भी खर्चा करते हैं, वो धन आया कहाँ से, वो धन कैसे अर्जित किया गया है, क्या वो धन किसी को दुख देकर अर्जित किया गया है, क्या वो धन किसी को झूठ बोलकर लिया गया है, वो पैसा कैसे कमाया गया है। तो अगर शुद्ध धन होगा तभी शुद्ध तन होगा, और हमारे खाने से हमारा मन रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर भी कई बार कई लोगों को शुद्धि की ज़रूरत होती है, कि फिर हमें संकल्प लेना होता है, अगर हम कई बार होता है ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस भी हैं जहाँ पर झूठ बोलना या किसी को धोखा देना मतलब नॉर्मल माना जाता है, उसमें कुछ बुराई लगती नहीं, वो बोलते हैं ऐसा तो करना ही पड़ेगा। अगर मैं जैसे एक प्रोफेशन लूँ लॉयर्स का, मैं ये नहीं बोल रही सारे लॉयर्स झूठे ही होते हैं, लेकिन कुछ प्रोफेशंस में होता है। तो अब आपको, आप किसी ऐसा कार्य करते हो जहाँ पर आप बेईमानी या झूठ बोलना या धोखाधड़ी इस तरह की चीज़ें करते हो, तो अच्छा है कि वहाँ पे संकल्प लिया जाए कि अगर मुझे शुद्धि करनी है तो वो चीज़ बदलनी होगी। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगी, कभी कभी ना हमारे दिमाग में एक आइडिया होता है कि अगर मैं कुछ सही कर रही हूँ या मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो जो आसपास के लोग हैं या सोसाइटी है वो उसको एक्सेप्ट करे, वो उसको अच्छा जाने। प्लीज़ रिमेम्बर, ऐसा कुछ नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी धोखाधड़ी या झूठों के बीच में रहते हो और आप सोचो कि मैं सच बोलूँगी तो सब अब अच्छा हो जाएगा, ये लोग मुझे पहचानेंगे कि सच्चा है, कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है वो लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं, हो सकता है आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े। ये मैं सब एक्सट्रीम एग्जांपल्स में जा रही हूँ, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग, जैसे आपने सुना होगा कि बड़े ऑनेस्ट होते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि कभी उनकी तरक्की नहीं होती, उनको ही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती हैं, जबकि जो झूठ बोलते हैं, गलत काम करते हैं, वो बहुत अच्छे करते हैं। तो ये सोचना कि ईमानदार हैं तो हमारा अच्छा होगा, नहीं, ये हमारी चॉइस है। मैंने चूज़ किया है कि मैं ईमानदार रहूँगी, मैंने चूज़ किया है कि मैं ऑनेस्ट रहूँगी, मैं गड़बड़ नहीं करूँगी, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और अगर उसके मुझे कॉन्सिक्वेंसेस, जो कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं एक बाहरी तौर पे देखें, तो आई हैव टू एक्सेप्ट देम, मुझे उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। मैं यहाँ पर ये डिमांड नहीं कर सकती कि मैं सच्ची हूँ, मैं अच्छी हूँ तो सब लोग मुझे अच्छा और सच्चा जाने, ऐसा कुछ नहीं होता। प्लीज़ रिमेंबर दैट सोसाइटी में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की बातें होती हैं और सब लोग सेल्फिश होते हैं, पर हमें डिसाइड करना है, तो मुझे संकल्प लेना है। तो पहले मैंने आपसे बात की एनवायरनमेंट की, मेरे एनवायरनमेंट में क्या कुछ शुद्ध करने की ज़रूरत है, क्या बदलने की ज़रूरत है, और फिर ये पूछना कि क्या मैं बदल भी सकती हूँ कि नहीं। फिर मैं धन, मेरा जो धन आता है वो कैसे आता है, वो कैसे अर्जित किया गया है। फिर हमारा खाना, अब खाने के में नहीं जाएंगे, खाना अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, वहाँ पर शुद्धि। और फिर हम सीधा ले लेते हैं मन की शुद्धि पे, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत सबको होती है मन की शुद्धि के लिए। और मन ज़्यादातर अगर हम बोलें अशुद्ध है, इसका मतलब है कि मन ने कुछ ऐसे बिलीव्स, कुछ ऐसे आइडियाज़ अपने दिमाग में बिठा लिए हैं जो कि दुख दे रहे हैं। मैंने कुछ ऐसी चीज़ों को सत्य मान लिया है जो कभी सत्य थी ही नहीं, जो सही नहीं थी, उन चीज़ों को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। अब जैसे आप ही के सवाल में आगे ये है कि अगर किसी ने मैनिपुलेट किया या किसी ने जो वो कहते हैं वो नहीं करते, लेकिन हम उन्हें ऑफेंड नहीं करना चाहते। अब आप अगर देखोगे, मैं ऑफेंड किसी को नहीं करना चाहती, ये कहाँ है, ये कहीं ना कहीं मेरे बिलीफ सिस्टम में है कि उसको बुरा ना लग जाए, मुझे किसी को ऑफेंड नहीं करना है, चाहे वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट है, चाहे वो आउट ऑफ फियर है, लेकिन ये एक बिलीफ है कि मुझे ऑफेंड नहीं करना है। तो क्या मैंने दूसरे को ऑफेंड नहीं करने के लिए, लेकिन खुद को तो ऑफेंड किया ना, अभी क्या हो रहा है, मैं खुद ऑफेंड हुआ ना उसकी वजह से, तो मतलब कहीं ना कहीं एक बिलीफ आई हुई है। हो सकता है घर वालों ने ये सिखाया, हो सकता है वो कोई बड़े हों आपके, हो सकता है वो कोई फैमिली ने बोला, बड़े मतलब जैसे एज में कोई होता है कि अरे आपके रिश्ते में कोई बड़े हैं, या फिर बड़े हैं जैसे किसी पद में बड़े हैं, जो हम एक बना लेते हैं वो किसी सेंस में बड़े हैं, उनके पास पैसा ज़्यादा है या पावर ज़्यादा है या कुछ ज़्यादा है। अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, देखो बिलीफ क्या है और सोसाइटी ऐसा ही मानती है, और ये हम सबका अनुभव भी होगा कि कुछ लोग या तो वो उम्र में बड़े हैं या उनके पास पैसा ज़्यादा है या उनके पास पावर ज़्यादा है या उनके उनका नाम है सोसाइटी में, तो हम उनको बड़ा मान लेते हैं। इस बात को समझो, ये बहुत ज़रूरी है। तो हमने उनको बड़ा कैसे मान लिया? तो जो हमारा स्केल है जिसके बेसिस पे हमने उन्हें बड़ा माना, वो स्केल में ही प्रॉब्लम है। हमने किसको बड़ा मान लिया? हमने उन मापदंडों पे किसी को बड़ा मान लिया जिन मापदंड पे वो बड़े होते हैं ही नहीं। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रही, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मेरे मन में कुछ ऐसा है कि ये बड़े हैं, इनको ऑफेंड नहीं करना। क्योंकि हमारी ह्यूमंस की प्रकृति ये है कि जब भी अगर कोई हमें हमसे छोटा लगता है या हमें अपने बराबर का लगता है, हम उसको कहने में घबराते नहीं हैं। उसे हमें अगर करेक्ट भी करना हो तो हम सोचते नहीं हैं। अगर हम नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कुछ है कि इनको मुझे ऑफेंड नहीं करना, ये बड़े हैं। तो हमें यहाँ पे शुद्धि कहाँ पे करनी पड़ेगी? मेरे उस स्केल पे जिसने उनको किस बेसिस पे बड़ा माना। और ये ज़्यादातर लोगों का आप देखोगे ऐसा ही स्केल होता है, और ये सोसाइटी में यही सारे मापदंड बताए गए हैं। आपको भी बड़ा होने के लिए यही मापदंड बताए गए हैं कि आपके पास जितना ज़्यादा पैसा होगा आप उतने बड़े होंगे, या आपके पास पावर होगी तो आप बड़े हो। बड़े का क्या मतलब है? कि बाकी लोग आपकी बात सुनेंगे, बाकी लोग आपके हिसाब से चलेंगे, है ना? तो हमें ये देखना होगा। तो यहाँ पर जो आपके सवाल हैं उसमें से क्लियरली आता है कि जो बुद्धि में एक आइडिया बनाया है, एक कॉन्सेप्ट बनाया है कुछ लोगों को लेके, वो हमें उसको ठीक करना होगा, उसका शुद्धिकरण। शुद्धिकरण मतलब अब मुझे करेक्ट करना पड़ेगा वो जो चीज़ है, और फिर मुझे उसके लिए संकल्प भी लेना होगा कि हाँ मुझे अब ये करना है। आई एम डन नाउ, जो भी अभी तक था आई एम डन, मुझे अब ये बदलना है। और इसको बदलने में मुझे हो सकता है रेजिस्टेंस भी फेस करनी पड़ेगी, मुझे दूसरों का परेशानी भी होगी, मुझे दूसरों से, या फिर वो लोग मुझे गलत भी समझेंगे, एंड आई एम ओके विद दैट। ये बहुत ज़रूरी होता है। तो आई थिंक शुद्धिकरण के लिए इतना अभी काफ़ी है। फिर भी आपके कोई और स्पेसिफिक सवाल हो तो आप और आगे पूछ सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, हाउ टू डील विद डेथ ऑफ अ लव्ड वन। किसी प्रिय की, प्रियजन की अगर मृत्यु हो जाए तो उससे कैसे निपटे? इसका जवाब आपको शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि हम बहुत सेल्फिश बीइंग्स हैं। हम सब बहुत सेल्फिश हैं, और जब हम किसी लव्ड वन की डेथ पे, प्रियजन की मौत पे दुखी भी हो रहे हैं तो उसके लिए नहीं हो रहे, हम अपने लिए दुखी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो चला गया, हमारी लाइफ में उसका क्या मायने था और हमारी लाइफ क्योंकि डिस्टर्ब हो गई है, उस चीज़ को हम मिस कर रहे हैं। और अगर जो आपका सवाल है हाउ टू डील, इफ़ इन वन लाइन आई हैव टू से, इट वुड बी by filling in the blanks, filling the blanks, रिक्त स्थान को भरने से। देखो क्या होता है, इसको साइकोलॉजी समझो। हमारा एक किसी भी इंसान के साथ जिसको हम लव्ड वन बोलते हैं, एक रिलेशनशिप होता है और एक रूटीन होता है। हम कुछ ना कुछ उस पर्सन पे डिपेंडेंट भी होते हैं, जो रिलेशनशिप का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं कोई डिपेंडेंसी है। वो हमारा, हम जो भी करते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, हमारा एक रूटीन होता है, हमारा रोज़मर्रा के उसमें एक है जहाँ पे वो पर्सन पूरी कर रहा है, मुझे पूर्णता दे रहा है किसी भी फॉर्म में। तो जब वो नहीं रहता, चाहे वो पर्सन हो या पेट हो या कोई भी हो, अगर वो नहीं रहता तो सडनली एक ब्लैंक आ जाता है। जो मैंने बोला ना फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब एक वहाँ पे ब्लैंक हो गया, एक रिक्त स्थान हो गया। जैसे आप सुबह उठे, आपको आदत है उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ बैठ के चाय पीने की, अब आप उठोगे और आपका माइंड जो है वो रूटीन में क्या है, वो देख रहा है कि अरे मैं और वो मिलकर चाय पीते थे, अब एक माइंड में इमिजिएटली एक्सपेक्टेशन आएगी कि अरे हाँ वो पर्सन तो होना चाहिए, लेकिन वो पर्सन नहीं है वहाँ पे। आप इमिजिएटली रियलाइज़ करोगे कि वो पर्सन नहीं है। अब माइंड ने क्या किया है, माइंड ने एक क्रिएट कर दिया है, उस सिचुएशन को रिपीट कर दिया है, मन में आ गई है ये बात, और वो पर्सन है नहीं वहाँ पे वो चीज़ को पूरी करने के लिए। तो क्या हो गया, यहाँ पे एक रिक्त स्थान आ गया, एक ब्लैंक आ गया। और जो हम मिस करते हैं, ये हम पर्सन को मिस नहीं कर रहे होते, वो जो ब्लैंक आता है ना हमारे माइंड में, जो माइंड क्रिएट करता है, उससे हमें परेशानी हो रही होती है, वो हमें परेशान करता है। तो हम खुद से ही परेशान हैं, हम दूसरे के जाने से परेशान नहीं हैं। हमारे अंदर जो मिसिंग प्लेसेस हो गई हैं, जो ब्लैंक्स हो गए हैं, हम उसको लेके परेशान हैं। तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो वही बात है, फिर से आती है, हमें बुद्धि से ये चीज़ को समझना होगा कि ये तो होना ही था, कभी ना कभी कोई ना कोई जाएगा ही, हर समय कोई रह ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और ये चीज़ हमें बचपन से सिखाई जानी चाहिए, जो कोई नहीं सिखाता हमें। हम कोई डेथ के बारे में बात ही नहीं करते हैं, हमारी सोसाइटी में अगर कोई मृत्यु के बारे में बात करे तो हम बोलते हैं अपशगुन हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। तो हमें इसके बारे में बात करनी है कि कोई भी कभी भी जा सकता है। तो क्या होता है, अगर हम इसके बारे में कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हमारा माइंड एक प्रिपेयर्ड होता है कि हाँ ये चीज़ें पॉसिबल हैं, उसको एक्सेप्ट करने के लिए उसको शॉक नहीं लगता है, ये बहुत ज़रूरी है। और सिंस अगर हमने वो सब चीज़ें नहीं की हैं तो कुछ नहीं है, फिर हमें डिपेंडिंग ऑन कि वो पर्सन कितना क्लोज था, हमारी रोज़ की रूटीन में, दिनचर्या में उस पर्सन का कितना हाथ था, कितना इम्पॉर्टेंट था, हमें बस उन चीज़ों को वहाँ पे उनको बदलना होगा, उनको थोड़ा सा अपने माइंड में एक्सेप्ट करना होगा कि वो माइंड बार बार वो जो है रोज़ हर रोज़ वो क्रिएट ना करे एक ब्लैंक प्लेस, क्योंकि वहीं पे हमारी परेशानी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपने सुना होगा, जब किसी की बहुत ज़्यादा क्लोज्ड वन की हो जाती है अगर डेथ, और आप प्रिपेयर्ड नहीं होते, तो आपको बोला जाता है कि आप स्थान बदलो, आप जहाँ पर इकट्ठे उनके साथ रहते थे आप वहाँ पर ना रहो, आप उनके सामान को हटा दो ताकि आपको बार बार याद ना आए, आप अपने रूटीन को चेंज करो। ये मैं आपको जो थेरेपी में, साइकोलॉजी में जो चीज़ें बताई जाती हैं वो बता रही हूँ, पर वो भी हमारे लिए हर समय तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो हो नहीं पाता है। और क्योंकि वो नहीं हो पाता है तो बस फिर हमें कुछ अपने आप को बिज़ी करना होता है किसी ऐसी चीज़ में कि हमारा माइंड उसकी तरफ डायरेक्ट हो जाए। देखो हम कर क्या रहे हैं, हम अपने माइंड में ही उस पर्सन को मिस कर रहे हैं, तो हमारा माइंड बार बार उस पर्सन को ढूंढ रहा है, वो जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम कुछ और करने लगेंगे तो जो माइंड की एनर्जी है वो हमारी शिफ्ट हो जाएगी। और फिर इसीलिए बोलते हैं कि टाइम हील्स, समय कैसे जो है हील करता है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी मेंटल एनर्जी कहीं और जाने लग जाएगी और धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। हाँ कुछ लोगों को लेके कभी भरता नहीं है, लेकिन हाँ वो कम ज़रूर हो जाता है। और एक और चीज़ सोचो ना, देखो हम जब जाग रहे होते हैं हम उस पर्सन को मिस कर रहे होते हैं, हम उसे याद कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम सो जाते हैं तो कहाँ गया वो पर्सन, गायब हो गया, क्योंकि वहाँ पर माइंड ही नहीं है। हम जब ड्रीम्स में होते हैं तो हमें कुछ भी नहीं पता होता, तो ये सारा किस चीज़ का खेल है, माइंड का ही खेल है ना, वो मेमोरी माइंड में ही है और वो पर्सन माइंड में ही है हमारे। तो अगर हम इस माइंड को, इस बात को समझ के कि ये प्रकृति का नियम है, कभी भी कोई भी जा सकता है, कोई चला गया हाँ बिल्कुल दुख होगा, ज़रूर होगा, लेकिन अब मुझे अपने माइंड से कैसे डील करना है कि मैं उससे जल्दी से जल्दी बाहर आ सकूँ, बस माइंड को एक अलग डायरेक्शन देनी होगी। क्योंकि वैसे भी कुछ सिचुएशंस में हम बहुत बार भूल जाते हैं, जैसे मैंने बताया हम सोते वक्त भूल जाते हैं, हम ड्रीम्स में भूल जाते हैं, हमारा माइंड ही भूल जाता है, तो कहाँ है, माइंड में ही तो है। और भी आई एम श्योर बहुत सारे तरीके होंगे जो मेरी समझ में है, मैं उसके साथ आपको शेयर कर रही हूँ। Swati has written by celebrating their life. Oh, I love that answer, Swati. Thank you. ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम उनका शोक ना मनाएं और उन्होंने जो उनके साथ जो समय बिताया और हम एक ग्रैटिट्यूड ग्रेटफुलनेस में हो कि हाँ इतनी देर के लिए मेरे को इस पर्सन का साथ मिला, क्योंकि मैं तो नहीं लाई थी ना उस पर्सन को, वो मुझे कोई भी जो मिलता है हमें वो इस अस्तित्व में ही मिला है, यहीं पर ही मिला है, तो जितनी देर भी वो रहा तो बहुत अच्छी बात है. और अगर हम उसको पॉजिटिवली लेंगे जैसे स्वाति ने लिखा है, वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि हम उनको सेलिब्रेट करें दुख मनाने की बजाय, कि कितना अच्छा समय हम लोगों ने बिताया. थैंक यू स्वाति फॉर दैट. और आजकल काफ़ी लोग ऐसा करने लगे हैं, ये जो सेलिब्रेशन की बात है ना, अभी कुछ समय पहले ही हमारे इधर नेबर्स में एक रहते हैं, उनके फादर की डेथ हुई थी, और बहुत ज़्यादा ऐसे ओल्ड नहीं थे, ही मस्ट बी इन हिज 50s, लेट 50s में होंगे. तो उनका इमिजिएटली एक तो आ गया था कि ही इज़ पास्ड अवे, और कोई भी कंडोलेंस के लिए ना आए, और हम फिर उसके बाद आप लोगों को बता देंगे कि कब मिलना है. और फिर जब मिले तो उन्होंने पूरा सेलिब्रेशन ही रखा था उनका, सब खुश कि हाँ ठीक है, जितने साल जिए बहुत खुशी से जिए, और अब आगे उनकी यात्रा आगे चल रही है, दुख किस चीज़ का मनाना है. तीसरा सवाल है यहाँ पर, आर मेमोरीज गुड और बैड? मेमोरीज आर नीदर गुड नॉर बैड, दे आर ईदर यूजफुल और गार्बेज. आई विल रिपीट, दे आर नीदर गुड नॉर बैड, दे आर ईदर यूजफुल और गार्बेज. इसका क्या मतलब है? देखो, यूजफुल कैसे है मेमोरी? अब मुझे याद तो रहना चाहिए ना कि मेरा नाम क्या है, मुझे याद तो रहना चाहिए मुझे थर्सडे को 8 बजे साइलेंट विजडम के सत्संग में जाना है, यूजफुल मेमोरी है ना. जब मैं सुबह सो के उठूँ तो मुझे अपना नाम पता है, मुझे पता है कि मैं इस घर में हूँ, इस घर में कितने कमरे हैं, मेरा किचन कहाँ है, मेरा बाथरूम कहाँ है, ब्रश कैसे करते हैं, चाय कैसे बनाते हैं, मतलब जो भी हमें सर्वाइवल के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो कहाँ पर है? वो मेमोरी में ही तो है, हर चीज़ मेमोरी में है. आप देखो, इवन हम जो बात कर रहे हैं अभी, हम लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहाँ है? मेमोरी में है. तो मेमोरी एक बहुत यूज़फुल चीज़ है, बहुत उपयोगी है हमारे लिए. और गार्बेज कब हो जाता है? वो मेमोरीज जिनका कोई यूज़ नहीं है अब, लेकिन वो पड़ी हैं, और वो मेमोरीज हम या तो पहले हम रिपीट करते हैं, फिर हमारा माइंड ऑटोमेटिकली उनको रिपीट करता रहता है. जो हमारे अंदर कुछ इमोशंस, कुछ थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं, और उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई यूज़ नहीं है. इनफैक्ट वो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं उनके बारे में सोच के, क्योंकि हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं, है ना. तो ऐसा है, तो हम गुड बैड नहीं बोलते हैं, अच्छा बुरा यहाँ पर कुछ नहीं है, बस हम ये देखते हैं कि हमें सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए. हमें यहाँ पर जीने के लिए मेमोरी की ज़रूरत है. आप लोगों को पता ही है जैसे कि एमनीजिया किसी को हो जाता है तो वो सब भूल जाते हैं, वो ये भी भूल जाते हैं मेरा नाम क्या है, अपने रिश्ते भूल जाते हैं, किसी को नहीं पहचानते हैं. अब वो तो प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है ना सबके लिए, उनके लिए भी और आसपास वालों के लिए भी, कि वो सब भूल गए हैं सब कुछ. तो उस हिसाब से मेमोरी की बहुत ज़रूरत है. पर हाँ, कोई भी चीज़ जो यूज़फुल होती है साथ में, हम उसके साथ में जो उसका यूज़लेस वाला कॉन्सेप्ट होता है, जो ज़रूरत नहीं है, वो भी साथ में हमारे चलता रहता है. और जब हम अध्यात्म में आते हैं, मैं आपको सच में बता रही हूँ, बहुत आसान हो जाता है उन सब मेमोरीज़ से डिस्कनेक्ट होना जो आपके लिए गार्बेज है. अब बहुत आसान हो जाता है जब आप इस पर आगे बढ़ते हो, साधना से चलते हो, और फिर चीज़ों को समझते हो, फिर आप उन पे ध्यान जाता ही नहीं है. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके घर में एक कचरे का डब्बा होगा, अब आप उस पे ज़्यादा ध्यान देते हो क्या? एक बार कचरे में जो चीज़ डाल दी, ख़त्म. वो कल कचरे वाला आके ले जाएगा, उसको देखते थोड़ी रहते हैं हम। बिल्कुल ऐसे ही आपको ये समझ आ जाती है, ये विवेक आ जाता है कि ये मेमोरी यूज़फुल है और ये यूज़लेस है, इसका कुछ काम नहीं है, तो आप उससे डिटैच हो जाते हो, आप उसमें घुसते ही नहीं हो। कुछ लोग होते हैं ना कि उनको क्या लगता है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो, देखो हर किसी का ना एक अलग अलग आइडिया होता है स्पिरिचुअलिटी का भी, तो सोचते हैं अच्छा, एक तो मेरे साथ तो स्पेशली ये होता है कि एक तो साइकोलॉजी कहा जाता है कि अच्छा आप साइकोलॉजिस्ट हो और आप स्पिरिचुअल हो, फिर तो आप हमारे मन की बात पढ़ लोगे, है ना, या आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, या आपको पता लग जाएगा कि मैंने क्या सोचा। अब हर किसी को तो ये नहीं बता सकते हो, लेकिन मुझे जानना ही क्यों है कि आपके मन में क्या चल रहा है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार ये बात समझ में आ गई कि सारी जो मेमोरी है सिर्फ यूज़फुल मेमोरी के अलावा बाकी सब कचरा है, मुझे अपने कचरे में इंटरेस्ट नहीं है, जो मेरे मन में चल रहा है वो भी जब मुझे कचरा नज़र आ रहा है तो मैं आपके मन के कचरे में क्यों इंटरेस्ट लूँगी, सिंपल सी बात है, क्यों इंटरेस्ट लेना है। लेकिन जब तक हमें नहीं पता होता तब तक हमें लगता है कि मैंने ये सोचा या मेरी ये मेमोरी है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, हम बड़ी इम्पॉर्टेंस दे देते हैं। ये ऐसा ही है कि मैंने जो अपना कचरे का डब्बा है उसको बहुत इम्पोर्टेंस दी हुई है सब चीज़ों को, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। तो जितना हम इन मेमोरीज से डिटैच हो जाएं, और वो कैसे होगा, वो आपको साधना से, बुद्धि के शुद्धिकरण से, शुद्धिकरण की आपने बात की थी ना, यहाँ पर भी बुद्धि के शुद्धिकरण की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर जो बुद्धि है वो अशुद्ध ही होती है हम लोगों की, अगर हम सिर्फ हमने सांसारिक चीज़ों पर ही ध्यान दिया है तो बुद्धि अशुद्ध होनी ही होनी है। आपका चौथा सवाल ले लेते हैं, ये वैसे मैंने काफ़ी हद तक पहले ही आंसर कर दिया है कि हमें ऐसे लोग मिलते ही रहते हैं जो, और स्पेशली हमारे फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं, रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, जो कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं, और हम उन्हें क्वेश्चन नहीं करते, हम उन्हें सवाल नहीं पूछते या कन्फ्रंट नहीं करते क्योंकि हमें लगता है कि वो ऑफेंड हो जाएंगे। हाउ टू डील विद देम, ये आंसर तो वैसे अब तक मिल जाना चाहिए आपको। इसका पहली बात तो मुझे क्यों ऑफेंड नहीं करना है, क्या है उनमें ऐसा कि वो ऑफेंड ना हो। अगर मुझे नहीं करना ऑफेंड, ठीक है चलो कोई बात नहीं, ऑफेंड भी नहीं करना, तो मुझे उन्हें फ्रेंड सर्कल में रखना ही क्यों है। फ्रेंड सर्कल तो हम बहुत आराम से अपना कम कर सकते हैं। देखो मुश्किल कहाँ होती है, रिश्तेदारों में, और रिश्तेदारों में भी मैं बताऊँ, इमीडिएट फैमिली, जो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है वहाँ पे कट करना सबसे मुश्किल होता है। रिश्तेदारों को भी कट करना बहुत आसान है, फ्रेंड्स को तो कट करना बहुत आसान होता है। और मैं आपको बताऊँ, मैंने ऑलमोस्ट अपना 90% सर्कल जो है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स वो कट किया है बिल्कुल, और कुछ नहीं है। ठीक है लोग बुरा मानते हैं, मैं ये नहीं बोलती हूँ, खूब बुरा मानते हैं, वो ये भी बोलते हैं अरे बहुत ईगोइस्टिक है, अरे पता नहीं क्या हो गया है, कोई बात नहीं, दैट इज़ योर थिंग, मुझे क्लियर हो गया मुझे क्या करना है ना। तो यहाँ पे क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत है। अगर मैं क्लियर हूँ कि मुझे अब ये चीज़ पसंद नहीं है, या तो आई एम ओके, या तो मुझे है कि हाँ ठीक है, मुझे पता है ये लोग ऐसे ही हैं जो कहेंगे कुछ करेंगे कुछ और मैं उससे डिस्टर्ब नहीं हो रही, तब बात ख़त्म है। क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं, कभी कभी आपके इमीडिएट फैमिली में होते हैं, रिलेटिव्स में हो जाते हैं, तो ठीक है अगर मुझे वो एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, एक्सेप्टेबल नहीं है तो या तो मैं हट जाऊं उनसे, उनको हटा दूं, अपने सर्कल से निकाल दूं, या फिर मैं उनको बोल दूं और अगर वो ऑफेंड होते हैं तो हो जाएं अभी, क्योंकि कब देखो कोई ना कोई तो उनको ऑफेंड करेगा। अगर किसी की ऐसी आदत है ये करने की, आप नहीं करोगे कल को कोई और करेगा, ये तो होना ही है, ऐसा नहीं होता कि हर कोई छोड़ देता है, तो ठीक है आप ही हो जाओ, आप ही ऑफेंड कर दो, इफ़ यू फील स्ट्रांग इनफ, इफ़ यू फील कंफर्टेबल। अगर आप कंफर्टेबल नहीं फील करते तो आप वहाँ से हट जाओ, ऐसे दोस्त रखने ही क्यों हैं आप। और ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं तो हमें अपने सर्कल को, हमारे संगत को मिनिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। हम ये यहाँ पर क्यों बार बार सेशंस करते हैं, ये जो हमारा अभी सेशन चल रहा है साइलेंट विजम का सत्संग है, संडे का सेशन है, और हैं और भी बहुत सारे सेशंस होते हैं, वो क्यों होते हैं? इसी संगत के लिए, कि ऐसी संगत जो आप, जिसके साथ मिलकर आप उस रास्ते पर चल सको जहाँ पर आप खुद को जान सको, जहाँ पर आप डिस्टर्ब ना हो, अनकंफर्टेबल ना हो इन चीज़ों से। तो फिर वो संगत भी है और ये संगत भी है। और देखो, संगत हम कितना भी बोलें, अगर हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं, हम कहीं ना कहीं उनसे अफेक्ट होते ही होते हैं। तो ये कॉल आपको लेनी है। स्वाति इज राइटिंग, योर फ्रीडम एंड पीस ऑफ माइंड शुड बी योर प्रायोरिटी। एब्सोल्युटली, अगर आपकी फ्रीडम और आपका पीस ऑफ माइंड आपकी प्रायोरिटी है, तो फिर आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए कौन क्या बोलता है, क्या सोचेगा, इट इज़ नॉट योर कंसर्न। और देखो, जैसे मैंने बोला, हम लोग सब यहाँ पर सेल्फिश हैं। सबसे पहले हमें समझना है, मैं बहुत बहुत सत्संगों में ये बात कर चुकी हूँ कि हमें यहाँ जानना है कि मनुष्य नेचुरली सेल्फिश है ही, वो अपने बारे में ही सोचता है। और अध्यात्म में भी हम अपने बारे में ही सोचते हैं, और अपने बारे में सोचते सोचते ही सेल्फिशनेस से ही आप सेल्फलेसनेस पे जाओगे। तो कोई जो भी कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, और अब आपको क्या रियलाइज़ हुआ है कि आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, तो आपको अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है। अगर दूसरों को लगेगा आप सेल्फिश हो रहे हो, आपको खुद को लगेगा अरे मैं उनसे बात नहीं कर रही, अरे उनको बुरा लग रहा है, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन।
दीदी,
हाँ जी, नमस्ते।
हाँ जी दीदी, आप हमेशा कहते हो ना कि जैसे कोई भी रिलेटिव है जो हमें कुछ परेशान करती है, एक बार अगर उसके साथ हम कर लें उनको डील, फिर वो आसान हो जाती है हमारे लिए।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पहली बार करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमें आदत नहीं होती, हम घबराते हैं, पर उसके बाद बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल सही बोला, वही जैसे मैंने कहा ना कि एक बार आपको करेज लगेगा, आपको ये लगेगा कि अरे, और उनको भी शौक लगेगा क्योंकि आप अभी तक उनके हिसाब से चीज़ें कर रहे हो। पहली बार जब आप कुछ और करोगे तो आपको भी परेशानी होगी और उनको भी परेशानी होगी, पर हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना है कि हाँ, ये परेशानी होगी, इट्स ओके, पर एक बार कर लोगे आगे बहुत आसान हो जाएगा। फिर से आपका फिफ्थ क्वेश्चन भी काफ़ी कनेक्टेड है इसी से। किसी ने अगर आपको बहुत सालों तक मैनिपुलेट किया और आपने उन्हें अलाउ किया, अब आप पूछ रहे हो व्हाई आई गॉट इन्वॉल्व्ड। देखो, आंसर हो सकता है आपको बहुत बुरा लगे अभी मैं जो बोलूँगी, लेकिन आंसर वही है और हमें वो समझना है। आप क्यों इन्वॉल्व हुए? क्योंकि उस समय ये समझ नहीं थी, ये बुद्धि नहीं थी कि मैं मैनिपुलेट हो रही। और बुद्धि नहीं थी का क्या मतलब है? बुद्धि नहीं थी का मतलब है कि जो भी मुझे सिखाया गया, मैंने उस चीज़ को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट कर लिया, है ना। और ये हम सब के साथ हो चुका है। मतलब अगर आप मुझसे पूछोगे, मेरे साथ भी सिचुएशंस हैं जहाँ पर मैं भी मैनिपुलेट हुई हूँ, और अब जब मैं उस चीज़ को देख पाती हूँ तो मुझे सिर्फ यही बात नज़र आती है कि वो क्यों हुआ, कि मुझ में बुद्धि थी ही नहीं, मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे लगा कि हाँ, वही बात होती है, ये बड़े हैं, इनको पता है, या ये ऐसे हैं तो ये सही ही कर रहे होंगे। और फिर एक पॉइंट आता है जब आप रियलाइज़ करते हो कि अरे, वो तो मेरा कुछ भला करना ही नहीं चाह रहे थे, वो तो अपना ही भला कर रहे थे, वो तो अपना ही कुछ कर रहे थे और मुझे इन्वॉल्व कर दिया और मैं भी इन्वॉल्व हो गई। तो कोई बात नहीं, एक बार बुरा लगेगा, पर एक बार ये रियलाइज़ करना कि मुझ में बुद्धि कम थी, अपने आप में ही बहुत बड़ा स्टेप। और अगर मुझ में ही बुद्धि कम थी और अब पता लग गया, तो अब रिग्रेट नहीं करना है, है ना। अब हो गया, अब क्या करना है, हमें आगे चलना है। अब इसमें नहीं जाना कि मुझ में बुद्धि नहीं थी उस समय, मैंने नहीं समझा, क्योंकि वो तो पास्ट है। अब जो मेरे साथ 20 साल पहले हुआ, जो 20 साल पहले मैं थी, वो कैसे जान सकती है जो आज मैं जानती है ना। एक समय होता है ना, हम भी अनुभवों से सीखते हैं। उस समय वो अनुभव नहीं थे, उस समय मैंने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया, नहीं हुई कोई बात नहीं, हो गया, अब आगे चलना। तो आपने फिर वही पूछा है कि हाउ टू कम आउट ऑफ दैट रिग्रेट, यही समझ के कि ऐसा होता है और सिर्फ आपके साथ नहीं होता, सबके साथ होता है। और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ। और जिनके साथ, जिन्होंने आपके साथ किया है ना, एक और चीज़ आपको बताती हूँ, उनके साथ भी ऐसा हो रहा होगा या हुआ होगा ज़रूर। यहाँ पर कोई नहीं होगा जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, है ना, सबके साथ होता है। तो कोई ये आप बोल सकते हो कि जब हम बड़े हो रहे हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अब हाउ टू फॉरगिव देम, हाँ, यही जान के कि उनको भी नहीं पता, वो अपनी इच्छा पूर्ति कर रहे थे, उनको आप एक टारगेट मिल गए जो बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहा था, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया, और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, उनके साथ ऐसा हुआ होगा, तो इसलिए कोई बात नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, प्रॉब्लम असल में ज़्यादा दुख इस बात का होता है कि मैंने कैसे अलाउ कर दिया मेरे साथ ऐसा होने का। तो कोई बात नहीं, हो गया। हाँ, मुश्किल होता है माफ़ करना, क्योंकि हमारा मन अभी भी वहीं अटका होता है कि उन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया। पर हम इसको एक पॉजिटिवली भी ले सकते हैं कि देखो मेरी बुद्धि कैसे आई, अगर वो ये नहीं करते मेरे साथ तो मुझे कैसे रियलाइज़ होता कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पता है, हम कितना भी बोलें कि हम दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, हाँ कुछ हद तक सीखते भी हैं, लेकिन हम ज़्यादा अच्छे से अपनी गलतियां करके सीखते हैं, अपने अनुभवों से सीखते हैं। और जो हम अपने अनुभव से सीखते हैं ना, वो जो चीज़ है वो हमेशा आपका साथ देती है। तो हमें यहाँ पर फिर से बुद्धि का बार बार प्रयोग करना होगा कि ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ, सबके साथ होता है, जिन्होंने मेरे साथ किया उनके साथ भी हुआ होगा, अब ये हो गया, ये मेरे लिए लेसन था, अब मैंने इसको सीख लिया, अब मुझे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे बुद्धि का प्रयोग करना होगा, क्योंकि जो बोल रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू फॉरगिव, ये क्या है, ये हमारा मन है। जो मन है वो नहीं समझना चाहता, मन कहता है अरे उसने मेरे साथ बुरा किया, अब उसके साथ भी बुरा हो, या मुझे बदला लेना है, या मुझे चैन नहीं पड़ रहा है, ये सब बातें मन कर रहा है। लेकिन मन से ऊपर क्या है, बुद्धि। तो हमें बार बार बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। देखो ये ऐसा है जैसे मैं बोलूं कि मैंने 10 बार बॉल को ऊपर फेंका और बॉल नीचे गिरी, मैं बॉल को ऊपर फेंकती हूँ और बॉल नीचे गिरी, और मैं बहुत परेशान हूँ इस चीज़ से कि ये बॉल बार बार नीचे ही क्यों गिर जाती है। अभी तो मैंने इतनी ज़ोर लगा के इतना तेज़ी से स्पीड से फेंका था तो भी नीचे गिर गई। तो अगर मैं इस चीज़ को लेके परेशान हूँ तो मुझे बुद्धि से क्या समझना होगा कि यहाँ पर लॉ ऑफ ग्रेविटी ऑपरेट कर रहा है। लॉ ऑफ ग्रेविटी है कि सिर्फ मैं नहीं, मेरी बॉल की बात नहीं है, कोई भी यहाँ पर बॉल ऊपर फेंकेगा तो बॉल नीचे ही गिरने वाली है, यही लॉ है, यही रूल है। सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं होता, इसको पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मेरी बुद्धि में ये बात आ जाएगी तो मेरे लिए उस चीज़ को समझना आसान हो जाएगा। अगर मुझे लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं पता तो मैं परेशान होती रहूँगी ये सोच के कि अरे बॉल नीचे गिर जाती है बार बार। लेकिन अगर मुझे लॉ ऑफ ग्रेविटी समझ आ गया, मेरी बुद्धि में ये बात समझ में आ गई, फिर मैं परेशान नहीं होऊँगी, फिर मुझे पता लग गया। तो अब यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि हाँ लोग ऐसे होते हैं, सबके साथ होता है, इट्स फाइन।